तब आप देखिए कि ये जो डिफरेंट डायमेंशन है, इन सब को सामने रखकर आइए ज़रा हम ये देखते हैं कि इंसानी ताल्लुकात में खराबियाँ क्यों आती हैं। कुछ रिश्ते बदनाम हैं, कुछ प्रोफेशंस बदनाम है ना। मसलन लोग लफ्ज़ लॉयर, मैं लायर नहीं कह रही, लॉयर को सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? हाँ, झूठ सच कमाया होगा, इधर की उधर लगा लेते हैं, करते हैं। शायर का लफ्ज़ लिखें, लफ्ज़ पोइट के साथ हमारे जहनों में क्या ख्याल आता है? इम्पॉसिबल बातें करना, तेरे लिए दूध की नहर निकालूं, तेरे लिए आसमान से सितारे तोड़ लूं, कहना ज़रा लेके तो आओ, वो जाएगा वापस ही नहीं आएगा, है ना। यानी फैंटसीज है ना। फिर इसी तरह से आप देखिए कि बाज़ लोग जब कोई भी किसी दूसरे के साथ मामला करते हैं ना, कहते हैं सोचा कुछ था, हो कुछ गया। बहुत सारे लोग, यानी आज के दौर में जितने मसाइल, जितने प्रॉब्लम्स लोगों के हमारे सामने डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं ना, काउंसलिंग के लिए या लोगों की मदद करने के लिए, तो आप देखेंगे कि उनमें 90% जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो एक दूसरे का इंटेलेक्ट ना समझने की वजह से। मैं अक्सर एक सवाल करती हूँ सबसे, आपसे भी करती हूँ। एक ही औरत है, एक उसकी बेटी है और एक उसकी बहू है, आपकी भी होगी, यानी आपकी अपनी अम्मी जो हैं, आपकी वो माँ हैं, लेकिन आपकी भाभी की वो सास है। आम बात है, कोई इसमें फर्जी तो नहीं। आप ज़रा अकेले में बिठाकर बेटी से माँ के बारे में पूछें कि आपकी अम्मी कैसी हैं, व्हाट डू यू थिंक, हाउ इज़ योर मॉम। सेम उसी औरत की बहू को अकेले में बिठाएं कि पक्की बात है हम किसी को नहीं बताएंगे, गारंटिड आपका तो नाम ही नहीं आएगा। ज़रा ये बताइए कि हाउ यू कैन डिफाइन योर सास। क्या एक ही औरत के बारे में दोनों रिश्तों के जो कमेंट्स हैं वो फ़र्क नहीं होते? वजह, इन 9 में से किसी एक या दो, और कुछ, और ये भी नोट कीजिए, ये 9 किस्म की इंटेलिजेंसी सारी की सारी किसी में होती हैं, किसी में 8 होती हैं, एक नहीं होती, और वो एक ना होना उसकी सारे किए किराए पे पानी डाल देता है, और किसी में सिर्फ एक होती है और बाकी 8 नहीं होती, बट वो इतनी ज़्यादा उसकी ज़िंदगी के अंदर उसकी असर अंदाजी होती है, वो हर रिश्ते में अकलमंद है। और मैं जब ये सारा टॉपिक तैयार कर रही थी तो मेरे जहन में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वो बात आ रही थी कि किसी ने उनसे नबी सल्लम के बारे में पूछा था कि बताइए अल्लाह के नबी सल्लम का अख्लाक कैसा था, तो कहा क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा, काना खुलुका हुल कुरान। अब ये जो मैंने 9 पॉइंट बताए ना आपको, इन 9 पॉइंट्स को सामने रख कर देखिए तो गो थ्रू कर लीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुनिया के कामयाब तरीन इंसान थे, मेरा भी ईमान है, आपका भी ईमान है, फिर आप चाहें तो मोहब्बत से इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम या कम अज़ कम जिन प्रॉफिट्स का कुरान पाक में तज़किरा है, कसरत से है, हज़रत मूसा को ले लीजिए, सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज़ के नाम पर ले लीजिए, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेचर स्मार्ट थे ना? गारे हिरा में जाके गौर व फिक्र नहीं करते थे? इन नफ़ी खल्क़ समावाती वल अर्दी वख्तिलाफिल लैल वन नहार नहीं था? फिर आप देखिए कि आप नंबर स्मार्ट नहीं थे, अनपढ़ थे, उम्मी थे, इसके बावजूद सहाबा कराम इस बात की गवाहियां देते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई बात कह देते या अगर आपके सामने कोई ऐसी बात पेश की जाती तो आप उसको फौरन दूसरों के सामने पेश कर देते थे। क्या आप अच्छा बोलते थे? बिल्कुल बोलते थे, वोकल थे। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेल्फ स्मार्ट थे? खुद को खड़ा करते हैं। एक मौके पे आपने अपने सहाबा को कहा कि देखो अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में किसी वक्त भी अगर तुम्हें सताया हो, तुम्हें दुख दिया हो, तो मुझसे अभी बदला ले लो। कौन करता है ये? जिसको ये फिक्र होती है कि कल मेरी गवाही क़यामत के दिन बुरी ये दे दे, इससे बेहतर है ये दुनिया में या तो मुझे माफ़ कर दे या मुझसे बदला ले ले। एक सहाबी ने खड़े होकर कहा कि अल्लाह के नबी जी, मैंने आपसे बदला लेना है। सहाबा कराम परेशान है और मुंह देख रहे हैं, क्यों भी क्या हुआ? कहा गज़वे बदर के दिन आप जब सफ़ें सीधी करा रहे थे तो आपके हाथ में एक छड़ी थी और आप अपनी छड़ी से ऐसे लोगों की सफ़ सीधी करा रहे थे, तो आपकी छड़ी की नोक मेरे पेट में घुस गई थी, दर्द हुई मुझे। अच्छा, कहा अच्छा ऐसा है तो फिर बदला ले लो मुझसे। सहाबा दूसरे जो थे उनको गुस्सा आ रहा था कि ये इतनी जरूरत क्यों कर रहे शख्स, लेकिन उसने कहा मैं बदला लूंगा। कहा खड़े हो गए, कहा नहीं अल्लाह के नबी, जब आपने मेरे पेट में छड़ी चुभोई थी ना, मेरे पेट पे कपड़ा नहीं था, आप भी कपड़ा उतारे। अब आप इमेजिन करें क्या हालात होंगे उस वक्त। आपने माइंड नहीं किया, आपने कहा ठीक है खोल देते हैं, खोल दिया, और जो ही कपड़ा उतारा आपने और वो शख्स आपके पास बदला लेने आए तो उन्होंने आपके पेट पर किस कर लिया। क्या सोचा? कहा कि मैं अपने होंठों को आपके जिस्म से इसलिए जोड़ना चाह रहा था कि क़यामत के दिन मेरे होंठ जहन्नुम की आग से बच जाए। अब ये उनका प्यार था, हम इसमें कुछ अपनी तरफ से कमेंट नहीं देते, लेकिन आप देखिए ये बहुत समझदारी की बात है, अक्लमंदी की बात है। फिर आप देखिए कि आप इन चीज़ों को जब गैरों की ज़ुबान से सुनते हैं, मैं जिस शख्स का भी नाम लिया आपको याद भी नहीं है या जिनको आप बाद में पढ़ भी लेंगे, मेरी नज़र में इंटेलिजेंट कौन है? मेरी नज़र में वो इंटेलिजेंट है जिसको अल्लाह ने इंटेलिजेंट कहा। इन नफ़ी खल्क़ समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लायातिल लि उलिल अलबाब। बेशक निशानियां हैं कायनात में उन लोगों के लिए जो अक्लमंद है। उलुल अलबाब कौन है? लुब वाले। अरबी जुबान में अक्ल को लुब कहते हैं। लबीबा बहुत प्यारा नाम है, अगर किसी का रखना हो तो नोट कर लें, लबीब लड़का और लबीबा बेटी अक्लमंद। अक्ल वाले कौन हैं? जो कायनात पे गौर व फिक्र करते हैं। यहाँ अगर मैं आपके साथ सिर्फ उन चंद बातों को गो थ्रू कर लूँ तो यकीन करें कि आपके दिल में इस चीज़ का यकीन आ जाएगा कि जो कुरान पर अमल करे, कायनात पे गौर करे, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के आगे अपनी अक्ल ना दौड़ाए, वो अक्लमंद है। एक बंदा आपको 9 किस्म की इंटेलिजेंसेस दे रहे हैं और खुद मरता है कुफर पे, क्या कहेंगे आप उसको? अक्लमंद है। दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद वो है जो मुवाहिद है। कुलु ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। जो कामयाब है वो वही है कि जो अल्लाह को एक कहता है। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना राहबर और रहनुमा नहीं मानता, क्या वो अक्लमंद हो सकता है? और ऐसी अक्ल से क्या मिला? आप मुझे बताइए कि अब्दुल्ला बिन उबई किस टाइप का अक्लमंद था, और अबू जाहल क्या बेवकूफ़ था? अबुल हकम कहता था खुद को हिकमतों का बाप, ये तो उसको टाइटल मिला अबू जाहल का, वो तो नहीं था अबू जाहल कहता खुद को, वो अबुल हकम था। अमर बिन हिशाम अपने आप को नाम के साथ और लकब के साथ अबुल हुकम कहता था। तो क्या पता चला कि 9 क्या 90 किस्म की इंटेलिजेंसेस भी हुई, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी को ज़ाया किया, वो अक्लमंद नहीं हो सकता। आज आप देखिए कि दुनिया का जो अंदाज़ है, बहुत ही दुख के साथ, और फिर वही बात है कि जब तक हम अपने इर्द गिर्द पे नज़र नहीं डालेंगे हमें बात नहीं समझ आएगी। आप देखिए कि एक चीज़ होती है मारूफ और एक होती है गैर मारूफ, यानी एक नोन है और एक अननोन है। नोन क्या है? मज़हब को एक साइड पे भी करके देख लें, नोन क्या है कि बी काइंड विद अदर्स, ठीक है, सच बोलें, और बाहर जब आप पब्लिकली दुनिया में घूमें फिरें तो आपको देखकर लोग ये ना सोचें कि आप दीवाने हैं या मजनू हैं। लेकिन ट्रैवलिंग के दौरान जो चीज़ अल्लाह ताला दिखाता है, मैं सोचती हूँ कि वो मेरे फ़ायदे की होती हैं। कल हमारा जो ट्रिप था, आपके पास जो आए हैं, वो हम स्कॉटलैंड से बाय ट्रेन आपके शहर में आए हैं। कल आप सबको पता छुट्टी थी, अभी भी आज भी छुट्टी है, हॉलीडेज चल रही हैं। कल के उस ट्रैवलिंग के 3-4 घंटे, ख़ास तौर पे जहाँ से कोई इंटरचेंज था, वो कुछ देख लिया जो शायद पिछले 19 साल में नहीं देखा मैंने। आधे नंगे पटंगे शराब में धुत लोग, लड़के और लड़कियां, जहां ट्रेन रुकी बाहर ट्रेन स्टेशन ऐसे लग रहे थे कि नाइट क्लब बने हुए, और गुल गपाड़े करते शराबें पीते लोग एक स्टेशन से ट्रेन में दाखिल होते, और जितनी देर वो वहां रहते बिल्कुल ऐसे ही सोच लें कि जैसे हमारे यहाँ मेहंदी आ गई, मेहंदी हो गई और उसके बाद कान पड़ी आवाज़ नहीं आती ना, इस तरह वो डब्बा गूंज रहा कि इवन हमारे साथ मुहज्जब लोग सारे नॉन मुस्लिम इधर उधर बैठे थे तो वो भी देख के स्माइल पास कर रहे थे, और फिर मेरे हस्बैंड के साथ वो खुद भी शेयर कर रहे, फिर इनको मौका मिल गया, फिर इनको एक दैट्स वाई इस्लाम फॉरबिड शराब। एक और लड़की थी यंग, वो डब्बे में आई, जूं ही गाड़ी में चढ़ी तो अंदर गई और एकदम स्लिप होके धड़ाम करके गिर गई, मतलब वो नशे में मदहोश थी। मैं उस वक्त ये सोच रही थी कि हम मुसलमान हैं, हमें कोई कहता है कि लोगों को अल्लाह की बात बताऊं, कहते नहीं लोग माइंड करते हैं, नहीं ये बड़े क्वाइट लोग हैं, नहीं वो म्यूज़िक सुन रहा है, नहीं वो अपने फ़ोन से खेल रहा है, हम कितना बैड फील करते हैं। इतना शोर गुलगुबाड़ा, मैं यकीन से सोच रही थी कि इनमें से कोई उठेगा पुलिस को कॉल कर देगा, मुझे ख़तरा था। मैंने हिफाजत की दुआएं पढ़नी शुरू कर दी, क्योंकि कुरान में आता है कि जाहिलों के मुंह ना लगो, तो जो नशे में वो आके हमें भी कुछ कह दे, कह सकते थे ना। इसको कोई कुछ नहीं कह रहा, अंदर गार्डमैन भी होगा, सबको पता लगता है, लेकिन वो शायद इसलिए नहीं कहेंगे कि ये हर साल होता होगा छुट्टियों में, मैंने अब पहली दफ़ा देखा। अब जब मैं इस सारे माहौल को देख रही थी तो मैं अपने हस्बैंड से भी यही शेयर कर रही थी कि ये माहौल हमारे बच्चे बच्चियां बाहर देखते ही होंगे ना, स्कूलों में, कॉलेजों में, क्रिसमस पार्टीज में और वैलेंटाइन डे में, जब उनको ये फोर्स किया जाता होगा कि आप भी फंक्शंस में, ये गंद बिला देखते होंगे ना, और इससे माँ बाप रोकें तो बच्चे कहते होंगे ना कि हाय हम कितने पिटी फील कर रहे हैं, हम क्यों इस तरह की चीज़ों में। लेकिन सच बताइए कि ये सब कुछ करने वाले लोग अब कल नशा टूटेगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, बहुत जीनियस होंगे, किसी के आराम में खलल नहीं डालेंगे, लेकिन क्या आप इनको अकलमंद कहेंगे? ये दीवानगी की हद तक अपने आप को पीछे कर लेना। पता क्या चला कि अकलमंदी और जहानत क्या है कि एक इंसान सिर्फ इस वक्ती शौक और जज्बे में ना आए। अब इसको आगे लीजिए, अब वो बेचारे शराब के नशे में धोते हैं, एक दो रात की बात है, दो तीन दिन रहेंगे और ऐसे ही हॉलीडेज आते ही होंगे तो वो कर लेंगे। क्या हम भी अपने जज्बात में नहीं बाहर भाग जाते? जब हम मुसलमान खुद को इस्लाम पे लेने वाले, जब हमारी ज़िंदगी में कोई वेकेशन आता है, हमारी ज़िंदगी का कोई सेलिब्रेशन आता है, क्या हम उस वक्त इमोशनल नहीं हो जाते? हमें ऐसे नहीं लगता कि ये हमारी ज़िंदगी की आखिरी और पहली खुशी है? और जब तक अपनी खुशी में खुशी देने वाले को नाराज़ ना करें, हमें मज़ा नहीं आता। इल्ला माशाल्लाह, मैं तकलीफ़ के साथ ये बात कर रही हूँ, तकरीबन 2-2.5 माह पहले पाकिस्तान चक्कर लगा और इस ट्रिप में दूर करीब से चंद शादियों को देखने का मौका मिला। मैं यहाँ बैठ के कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन जो आज हमारे अपने भाई बहन खुशियों के मौके पे करते हैं, ये कहीं से जहानत नहीं है, ये अकलमंदी नहीं है। 10-10, 15-15 खाने पका के आप ये साबित करते हैं कि हम अमीर बहुत हैं। आप ये साबित कर लेंगे लोगों को कि आप अमीर बहुत हैं, लेकिन आप साबित कर देंगे, यू विल प्रूव कि यू आर नॉट इंटेलिजेंट पर्सन। एक ऐसी दावत थी, और हम बहुत अच्छी दावत थी, यानी पर्दे का एहतमाम था, गैर इस्लामी कुछ नहीं था, लेकिन कम अज़ कम 8-10 डिशेज थी जिसमें हर रोस्टेड आइटम होगा ना मीट में। वो जो साथी जिनके साथ मुझे उन्होंने लेकर गई, तो मैंने उनके जो घर वाली थी, मैंने उनसे कहा कि देखिए सिस्टर, माशाल्लाह बहुत अच्छा है सब कुछ, अल्लाह आपको बरकत दे, बट एक क्वेश्चन है मेरा कि एक वक्त में अगर बीफ की एक बोटी कोई खा लेता है, तो चिकन की है, तो फिर उसके बाद उसको इसमें फिश भी खानी है और उसको इसमें बटेरे भी खाने हैं, तो ये है, तो क्या ये मेहमान को की इंसल्ट करने वाली बात नहीं? आप एक खा लें तो दूसरी नहीं खाएंगे, तो हसरत होगी, पता नहीं वो कैसा था। कहने लगी, वो बहन भी थी वहीं, यानी जिस जो मर्द थे घर वाले होस्ट होंगे, उनकी बहन और उनकी बीवी, वो कहती है मैंने हाथ तक जोड़े हैं अपने शोहर के कि बस करें बस करें, पर वो कहते नहीं, मेरी पहली बेटी है, उनकी बेटी थी और दूसरी तरफ बेटा था, मेरी पहली बेटी है, लोगों को मैंने दिखाना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। और इतना खाना जाया, इतना खाना जाया, हम अपनी आंखों से देख रहे होते हैं कि बैरे उनको उठा उठा के एक दूसरे पे प्लेटें डालते हैं, वो बिन में जाता है, ये जहानत नहीं है। एक शादी का जोड़ा, कैन यू बिलीव, 5 से ऊपर और नीचे के कुछ जो कम पे ले लेता, कहते बड़ा सस्ता ले लिया, कहते 5 कह लेते चाहे एक का ही है, लेकिन कहने की बात है, 1 लाख का शादी का जोड़ा लेना अकलमंदी है? उससे तो मैं फिर कहूंगी कि जो अल्लाह को नहीं पहचानते, रसूलों को नहीं मानते, वो फिर भी अकलमंद है। यहाँ का मुझे अभी तक नहीं पता, अमेरिका में स्पेशल शॉप्स होती हैं जहाँ से लोग किराए पे वेडिंग का जोड़ा खरीदते हैं, इधर भी ऐसा होगा? एक दिन का जोड़ा उन्होंने जाके खरीदना है और उसको पहन के ड्राई क्लीन के पैसे डाल डुल के $100-200 में देके आ जाते होंगे, और वो पैसों की भी बात नहीं करेंगे क्या बाद में इसको? आप अपने ऊपर लीजिए, आप तो, हो सकता है कि आपकी शादी काफ़ी साल पहले हुई हो, जिसकी शादी आज से 5-6 साल पहले हुई, मैं आपसे सबसे पूछ सकती हूँ कि आपने वो शादी का जोड़ा बाद में पहना, कितनी बार पहना? जो आपने शादी का जोड़ा अपने पहले बेटे की शादी पे पहना, वो दोबारा पहना? दूर वालों में इसलिए नहीं पहनते कि भारी बहुत है, शादियाँ तो आती हैं फिर नहीं पहनते, लोग कहेंगे ये बहुत बनठन के आगे इनको बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। अच्छा करीब में पहन लेंगे कोई बात नहीं, एक भाई की शादी पे बनाया था तो फिर दूसरे भाई के पहने, नहीं नहीं लोग कहेंगे इसकी बहन का सही जोड़ा है। सच बताइए, इज इट इंटेलिजेंस? मैं और आप अपनी जहानत को देखें, कोई हमारे सामने यहाँ पड़ा और नोटों का ढेर ले और माचिस ले और उसको आग लगाने लग जाए, इज शी इंटेलिजेंट? हम रोकेंगे उसको? हम रोकेंगे, कहेंगे आप क्या कर रही हैं, इधर आग लगेंगी? बिलीव मी कि आज पैसे को आग नहीं लगती। एक सूट सीधी सादी दुकान से आप साफ सुथरा ले लें, हो सकता है 1000-1200 का आ जाए, उसी पे सिर्फ एक स्टैंप लगती है किसी ब्रांड की, तो 5000 का भी सस्ता है क्योंकि सेल में मिल गया, वरना तो ये 8 का था। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मुझे कहीं जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन राह चलते हुए वो अल्लाह ही मंजर दिखाता है कि मैंने एक ऐसी ब्रांड चेन पे सेल दे लगे हुए देखी, और कजन थी मेरी वो अंदर गई, मैं वहां रुकी। बिलीव में ऐसे लग रहा था कि ये औरतें पागल हो गई हैं, और ऊपर हैंग थे ये 80%, ये 50%, और उन रैक्स में, और हाथ पे यूं हैंगर हैंगर डाल रही थी कि वो कुछ नहीं देख रही थी कि डिजाइन कैसा, रंग कैसा, सिर्फ कीमत देख के। और एक एक के हाथ में 10-10 जोड़े होंगे, और लाइनों में ऐसे लोग लगे हुए थे जैसे राशन लेने के लिए वो खड़े हों, लोग कहत पड़ने पे, सिर्फ इसलिए कि ये आज संडे को सेल खत्म हो जानी है। और वो जो करीब के लोग होते हैं वो कहते हैं गंद भी बिक जाता है। हत्ता कि उन्होंने उधर एक रैक में ऐसे कपड़े रखे हुए थे जिसपे लिखा था नो रिटर्न, नो एक्सचेंज, नथिंग, और जब उसके करीब जाके हमने देखा तो किसी का दुपट्टा, किसी की कमीज, उनको पूछा, कहता ये एज इट इज है तभी ये सस्ते हैं। यानी उन्होंने बिलीव में अपनी कतरनों को जोड़ जोड़ के जोड़े, और वो भी ठीक थे, कोई सस्ते इतने नहीं थे, लेकिन जो बाकियों के नस्बत सस्ते थे, वो रैक हमारी आंखों के सामने खाली हो रहा था। अब आप कहेंगे कि आप ये सारा कुछ देखने क्यों गई थी? मैं नहीं गई, मुझे अल्लाह ले गया, अल्लाह ने दिखाया। अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करें। आखिरी एंगल पर मैं आपसे चाहूंगी कि मैं और आप भी तो अपनी जहानत को परखें। जिंदगी तो हम गुजार ही रहे हैं ना, शायद बहुत थोड़ा वक्त रह गया है कि नहीं? कितने दिन की जिंदगी है? 25, 30, 40, 50, 60, 70, इससे ऊपर क्या जिएंगे? कोई बंदा 70 से ऊपर जी भी ले ना, तो वो दूसरे ही बेचारे आंखें लगा के देख रहे होते हैं बाबा जी ने जाना कब है। अल्लाह इन पर रहम कर दे, दुआ करो अल्लाह इनकी मुश्किल आसान करे। वो दूसरे लफ्जों में क्या होता है कि जाएं हम भी निकलें, बहुओं बेटियों पे भी अल्लाह रहम करे। अब मुझे आप बताइए, 60-70 साल में से भी 70 पे तो कुछ नहीं, 60 नहीं, 50 साल तक मुझे लगता है उम्र है जिसको बंदा इंजॉय करता है। क्या नेचुरली दिल नहीं बदलता जाता वक्त के साथ साथ? पहले एक चीज़ देखकर जान निकल जाती थी, माँ की मिन्नतें करनी, रोना ये जोड़ा ले दो, फिर जब अपने हाथ में पैसा ले आया कहा खूब ले लो, फिर ज़रा से बढ़ता इंसान कहते क्या करना है, पहले भी है, चलो उसी को पलट लेंगे। आप ज़रा आगे जाएं, मुझे यकीन है कि 40-50 के बाद तो दिल नई चीज़ों पर डालने को हाथ करता ही नहीं है। समझ रहे हैं? अंदर कितने साल बचते हैं, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, रॉन्ग हो सकती है, और हर मुल्क का लाइफ स्टाइल और स्वयं फ़र्क है लाइफ का, लेकिन अगर मैं फील करूँ ना तो 15 साल की उम्र से लेकर, यानी एक आइडियली कहूँ तो 35 ईयर्स, चले 40s भी कर लीजिए, ये वो वक्त है जिसमें मन चलापन होता है। 15 साल की उम्र में दिल करता है जो नज़र आया वो मुझे मिल जाए, बस कामयाबी इसी का नाम है कि चीज़ मेरे रैक में आ जाए। 20 साल और जोश, फिर उसमें अगर ख़ास मौके आ जाए जो मर्ज़ी करो, कर्ज़े लो जो मर्ज़ी करो, करना पड़ेगा क्योंकि ये मौका फिर बार बार थोड़ी आता है। मुझे एक माँ ने, इसी मुल्क की बात है, पुरानी बात है, आपके शहर की बात नहीं है, अपनी बेटी का जोड़ा दिखाया। कैन यू बिलीव, मैंने अपनी आंखों से उसकी पर्ची भी देखी, जोड़ा भी देखा, और उस लड़की को पहने भी देखा, लेकिन वो उस दिन भी खुश नहीं थी। 800 पाउंड का जोड़ा था, वो कहती कि ये 50% सेल पे मिला है। मैंने पहले पर्ची देखी, जोड़ा बाद में देखा, वल्लाह ही जब मैंने पर्ची देखी, क्योंकि वो गया हुआ था कहीं ठीक होना, तो वो कहने लगी कि आप साथ बैठे गाड़ी में तो मैं अपनी बेटी का जोड़ा पकड़ लूँ, भाई क्या खैर है? कहती को लिया था, ऑल्टर कराने दिया हुआ तो मैं ले आऊँ। मैंने कहा आप जाइए, मैं खड़ी हूँ इधर। वो अंदर गई मैं दरवाजे के पास जहाँ शुरू में इंटरेस्ट थी, बिलीव मी जो मैंने वहाँ 5-7 मिनट में बेवकूफ़ियाँ देखी, मैं नहीं कह सकती कि दे आर इंटेलिजेंट पीपल। इंटेलिजेंट वो हैं जो उनको बेच रहे हैं और पागल बना रहे हैं, उन्होंने भी कोई सेल लगाई भी थी। 1000-1000 पाउंड, आपके इस मुल्क की बात है, सेल में 1000 पाउंड के वेडिंग सूट, और ना बाजू पूरे, ना कमर पूरी, ना ढकती, और वहाँ दाढ़ियों वाले बापों को आए देखा है। वल्लाह ही वो बुज़ुर्ग मुझे नहीं भूलते जिनकी बेटी और बीवी साथ थी, और वो बेटी एक जोड़ा पहन के आई जिसका पूरा बैक में कमर से लेके इतना बड़ा होल था, अंदर से नंगा था, और वो पहन के घूम घाम के दिखा के बातें कर रहे थे माँ बाप हट के, ये सारी बहनों के बनाएंगे, यानी वो भाई की शादी के लिए बहनों का जोड़ा पसंद हो रहा था। और मैं शर्म से डूब डूब रही थी, बाप देख देख के कह रहा था कि ये ठीक है और वो है, और जिस तरीके से वो नाप लेते और देते हैं। और जब मैंने वो जोड़े की कीमत पढ़ी, मैंने कहा बाजी इतना महंगा जोड़ा, 800 पाउंड का जोड़ा, ये 80 भी नहीं है, ये 8000 भी नहीं, ये 800 पाउंड पाकिस्तान में शायद कितने बनते होंगे, आप हिसाब लगा लें। कहती नहीं, फिर मेरी ये बेटी की ख्वाहिश है, और वाकई वो कहती हैं ये 50% डिस्काउंट है, ये 1600 पाउंड का जोड़ा था। आप वो पहन के अगर शुक्रगुजार हैं, वो पहन के अगर आपकी ज़िंदगी कामयाबियों की दलील बनती है ना, तो छोड़िए माँ बाप ने और किसको देना होता है, 8000 का भी ले दें, क्या आपके बच्चों की ज़िंदगियाँ तो खुशी की गुजरी? और बिलीव में वो जोड़ा पहनने वाली पता नहीं आज के साल में, अल्लाह नोज़ दी बेस्ट, खुशी नहीं मिलेगी इन चीज़ों से। वमन आरादा अन ज़िक्र फ़ा इन्ना लहू मईशतन दनका। एक इंसान अगर हकीकत में अक्लमंद है ना, तो ये 20 साल, 15 से शुरू किया था, 25 35, ये 20 25 साल टोटल हमारे अरमान है इस दुनिया में, खा लें पी लें सो लें या उस रब को राज़ी करके, हम फी खा खाले दून, ना ख़त्म होने वाली आखरत को अच्छी बना लें या फिर दाव पे लगा लें। कुछ लोग ये 20 25 साल की नहीं, सिर्फ 1 2 साल की खुशियों के लिए आखरत को दाव पे लगाते हैं। बिलीव मी, मैं ऐसी बच्चियों को जानती हूँ कि जिनको मुआशरे से नहीं, अपने घर वालों से जिहाद करना पड़ता है कि हमें फजूल खर्ची नहीं करनी, हमें इसराफ नहीं करना और सो ऑन। और ये चेंज मैंने देखी है तो कुरान पढ़ के आती है, हाफिज बन के नहीं आती, माजरत के साथ आलिमा बन के भी नहीं आती, ये तज़किया और तरबिया के साथ आती है। यहाँ मैं तहदीस नेमत के तौर पे कहूँगी कि एक बच्ची है, किसी मुल्क की भी है, कहाँ की है, उनकी शादी है, उन्होंने अपने माँ बाप को कह दिया मैंने नहीं खर्चा करना, घर में करनी है, नई इज्जत का सवाल है, ये है, बाहर जाना है, ये करना है वो, यानी कह किस्सा मुझसे एक लंबी कहानी, वो बाजार नहीं गई शॉपिंग करने, जोड़े नहीं खरीदे, क्यों नहीं, और घर वाले कह रहे हैं लो, खानदान वाले बातें करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये शादी में ये कुछ नहीं हो रहा। वो कहती है आपने जो शादी में खर्चा करना है वो लाएँ दर्स में करते हैं, आपने जो हॉल शादी के लिए लेना है वो दर्स के लिए लेते हैं, शादी घर में करते हैं, अगर 100 उधर बुलाना है। ये चीज़ें किसको नज़र आती हैं, जिसकी नज़र हमेशा क्यों ज़िंदगी पे आती है। तो आपके मेरे लिए मैदान खुला हुआ है, अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने रब को नहीं राज़ी किया ना, सारी दुनिया को राज़ी कर लूँगी फिर भी नहीं होगी। मज़े की बात सुनो, हम बहुत अक्लमंद बनते हैं, हम कहते हैं लोगों को खुश कर लो, अक्लमंदी यही है ना, सब आपसे खुश रहें, बेटा सबको खुश रखना, यही नारा लगता है ना, कोई आपसे खुश नहीं होगा। जिसने रब को नाराज़ किया इसलिए कि शौहर खुश हो, जिसने रब को नाराज़ किया इसलिए कि फैमिली खुश हो जाए, ससुराल खुश हो जाए, वल्लाही वो कभी खुश नहीं होंगे। और जिसने रब को राज़ी किया तो रब राज़ी तो जग राज़ी, दिलों के ऊपर उसका कंट्रोल है। मैं इसके बीसियाँ या डायमेंशन आपको दे सकती हूँ कि हम अपनी अमली ज़िंदगी में कितने ज़हीन हैं, ये हम खुद देख लें। चलें ये इसराफ़ की और ख़र्चे की और बेपर्दगी और बेहयाई की बातें छोड़ें, आप देखिए कि मैं और आप रोज़ घर में कैसे होते हैं, हमारे शौहरों का ही हौसला जो हमें बर्दाश्त करते हैं, कंगी भी कर लें तो पूछेंगे बेगम आप कहीं जाना है, अमूमन का यही हाल है ना, आप करें हम मेकअप ज़रा, बच्चों समेत शौहर पूछेंगे बेगम खैर है, कितनी बेवकूफ़, क्या वो औरत इंटेलिजेंट है, घर में बैठी लहसुन प्याज की भूख मियाँ को भी आए और उसी मियाँ के साथ शॉपिंग करने दे, ठहरे में आती हूँ और गई और ऊपर जल्दी से मुंह धोया और कुछ नहीं लिपस्टिक लगा के आ गई, मुझे वो औरत इंटेलिजेंट नहीं लगती। मैं सोचती हूँ कि मियाँ से तो शायद उसको कुछ मिल ही जाता, प्यार ही मिल जाता, उसके दिल में एहसास होता अल्लाह ने मुझे कितनी प्यारी बीवी दी, चलिए बाहर वालों से इसको क्या मिलना है। तो क्या एक बेपर्द औरत इंटेलिजेंट हो सकती है? जहां से मिलना है वहां दीजिए ताकि कुछ मिले, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, हमारा सारा आउटपुट ब्यूटी का बाहर नहीं है। और फिर उस पे भी सोने पे सुहागा, माजरत के साथ, यहाँ का मुझे इतना अंदाजा नहीं है, आम दिनों में सीधे साधे हमें कोई देख भी ले तो हो सकता है कि इस ओके, नमाजें भी पूरी उस दिन, गीबत भी नहीं, और जिस दिन सर से पांव तक अपनी खूबसूरती का एक्सपोजर करते हैं सारी बिरादरी के सामने लाके बिठा देते हैं, देखो हमें है कि नहीं ये बात, जब हम अपनी बहू बेटियों को सजा संवार के सबके सामने रखते हैं, हम चाहते क्या उससे, मैं इसको दीन पे नहीं ले रही, मैं इसको शादी ब्याह के मौके के ऊपर नहीं, मैं इसको इंटेलेक्ट से सोचती हूँ। कभी आपने इस बात को सोचा, पता है लोगों को कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, कोई आपसे कह जरा दिखाना मुझे अपनी की, मैं आपका जरा अकाउंट तो चेक करूँ, हमारे पास कितना गोल्ड है, हमारे पास कितना डायमंड है, हमने कहाँ कहाँ प्रॉपर्टीज ली हैं, क्या किसी को कोई दिखाता है? तो हीरे मोतियों से कीमती अपनी इज्जतें हम दूसरों को क्यों दिखाते हैं? मैं कहती हूँ सिर्फ मुझे उसकी दलील ले दो, रीज़न वाई, व्हाट्स द बेनिफिट। अब देखिए मैं और आप सब यहाँ बैठे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम कंफर्टेबल हैं, हमें शक पड़ जाए कि किसी खिड़की में से कोई एक ब्रदर हमें देख रहे हैं, मैं बिल्कुल इंटेलेक्ट पे लेके बात कर रही हूँ, क्या हम कंफर्टेबल फील करेंगे? हम फौरन अपने स्कार्फ ठीक करेंगे, कोई निकाब लेता है तो वो ले लेगा, हम जितना औरतों में इंजॉय करते हैं, कुछ औरतें और कुछ मर्दों, वो तो कॉन्शियस ही रहते हैं, मैंने खुद देखा गाड़ी में जब औरतें होती हैं सारी ड्राइविंग करते लेते बहुत इंजॉय करते हैं, मैं खुद अपना बताती हूँ, किसी की गाड़ी में बैठे और मर्द भी बैठे और बीवी भी उसकी और आपके भी साथ, मेरे से बोला ही नहीं जाता, मैं सोचती हूँ कि अच्छा कभी ऐसा चले मर्द सारे दूसरी वाली गाड़ी में चले थे, हम औरतें, फितरत की बात बता रही हूँ, वी इंजॉय मोर इन सेम इंटेलिजेंट और एक सेम ग्रुप के अंदर। लेकिन आप देखिए हम ऐसे मौक़ों पे क्यों भूल जाते हैं कि जो आते हैं जो देखते हैं वो भी इंसान है, उनके अंदर भी शैतान है, लेकिन हम कहते हैं नहीं ना, बड़ा मुश्किल है। और मैंने लोगों को ऐसे मौक़ों पे जो उज़र देखे हैं वो बच्चों वाले उज़र, याद रखिए मजबूरियों के नाम पे कई लोगों की मुनाफ़त छुप जाती है, शुक्र करें मजबूर है, क्योंकि मजबूरी ना हो हमने फिर भी करना वही है जो हमारा दिल कहता है। फिर इसके और एंगल, हराम को चंद दिन के लिए पेट में लाएं, मर्द हराम कमाता है। अब लफ्ज़ मैं हराम बोल रही हूँ, आप उसको डाइल्यूट करके जो मर्जी कह दीजिए, इट्स ओके, आज का दौर है, सूद के बगैर नहीं, रिश्वत के बगैर नहीं, और उसी में घर को ले लें, जो भी मीन्स जिसमें अल्लाह की नाराज़गी है, लोग तो उसको अकलमंद कहते हैं, लेकिन क्या वो इंटेलिजेंट है? एक सिस्टर हमारी माशाल्लाह अपनी बहुत प्यारी कहानी सुनाती हैं, नया नया घर लिया था उन्होंने और सफ़ेद पोशी है ज़िंदगी में, को बहुत मैंने खुला नहीं देखा था उनका हाथ, क्या जोड़ तोड़ करके कहती हैं सुनाती हैं, पाकिस्तान में जायदाद बेची, ये किया, इधर कहीं बाहर के मुल्क में घर ले लिया, वही बात, टोकन ही जमा हुआ बाकी किस्तों पे जो भी चलता है, अल्लाह ने उनके, मैं कहती हूँ, मुकद्दर संवारना था और उन्होंने कुरान खोल लिया उसी दिनों में जब घर बना, तो उसके चंद सालों या एक दो साल के अंदर कुरान खुल गया और सूरत बकरा को ख़त्म नहीं होने दिया उन्होंने। इन्नल्लज़ीना याकुलूना रिबा ला यकुमून इल्ला कमा यकुमुल्लज़ी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस्सी। समझ आ गई बात, बस शुरू हो गई। उनके लफ्ज़ मुझे याद आए इसलिए ये मैंने उनकी मिसाल दी। वो कहती हैं उस्ताज़ा जब मैंने अपनी फैमिली में अपने घर वालों में ये डिक्लेयर किया कि वी आर सेलिंग दिस हाउस, तो मेरे भाइयों ने, मेरे जो भी, उन्होंने कहा तुम पागल हो गई हो, पहले तो सारी ज़िंदगी घर लेने की आस में थे, अब मिला हुआ छोड़ती हो, यानी लोग इस तरह ला तखाफून लौ मत लाएम, हमें इस तरीके से लोग मलामतें करते हैं कि दुश्मन तो मुखालफत करेगा ना, तो दोस्त तो अपने तो मलामत करते हैं, और मलामत ख़तरनाक है, हम ज़रा दीन पे चलें लोग ऐसा मलामतें करेंगे, हाय देख लें फिर ऐसा ना हो, हाय स्काफ लिए तो बच्ची का रिश्ता होगा, दाढ़ी रखी है तो बेटे का रिश्ता होगा, ये घर छोड़ दोगे तो किराए पे मरोगे, इतना खौफ दिलाते हैं, बंदा कहता है मैंने नहीं करना कुछ। कभी आप उनकी ज़ुबान से उनकी कहानी सुने तो वाकई इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, घर बेचा फिर उसके बाद जो मुश्किलों में पड़े हैं मरहले आए, वो कहती थी मेरे दिल मुतमईन है। तो ज़हीन कौन है, इंटेलिजेंट कौन है, जो 4 दिन का हराम या अल्लाह की नाफरमानी का काम छोड़कर हमेशा के घर जन्नात इन तजरी मिन तहतिहा अलनहार, अल्लाह तो वहाँ के घरों की दावतें देता है, सूरह फातिर पढ़ी है, अल्लाह कहते हैं तुम्हारे घर जन्नत अदन में होंगे, एक ईंट सोने की है तो एक चांदी की है तो एक सब्ज़ है तो एक सुर्ख है तो एक मोती की है, उसकी क्या बात है। आप और मैं अपनी ज़िंदगी में देखें, घर में बैठ जाइए, कागज़ कलम को उठाकर ये पूछिए खुद से कि हाउ मच इंटेलिजेंट आई एम। जिस रब ने आपको मुझे पैदा किया, नंबर एक उसको पहचानना, उसको क्रिएटर भी मानना तो उसको हाकिम भी मानना, और फिर उसके हुक्मों पे चलना, उसके भेजे हुए रसूल की इत्तबा करना, जितना आपकी ज़िंदगी में अल्लाह की मार्फत, उसके रसूल की मार्फत, उसके कुरान की मार्फत, ये अगर मैंने बात ना की तो मैं अपने आप को फिर इंटेलिजेंट नहीं कहूँगी। एक डायमेंशन और दे के जाऊँगी आपको आज, कितनी किताबें पढ़ी आपने, मैंने दुनिया का कितना इल्म लिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिया और लिया, अल्लाह की इस एक छोटी सी किताब से मेरा ताल्लुक़ कितना है, खुले तो पढ़ती हूँ, पढ़ूँ तो समझ आती है, समझूँ तो आंखों से आंसू बहते हैं, अल्लाह की किताब के मामले में मैं कितनी इंटेलिजेंट हूँ, अल्लाह की किताब के मामले में इंटेलिजेंट कौन है आप ही बताइए, जो इसके पांचों हक जानता है। इसी सीरीज़ में हमने एक लेक्चर किया कुरान से कैसे ताल्लुक़ जोड़ें, मजबूत कैसे करें, वो जवाब है इसका, इसके साथ हमारी इंटेलेक्ट कितनी है। आज घर जाइए अपने 4-6 बच्चे बाहर घर वाले जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन सब के सामने बैठकर सादा कुरान रखें और उन्हें 1, 2, 3 करके कहें बेटा इस आयत में क्या, उस पेज पे क्या, उधर क्या, इधर क्या। हो सकता है हमारे बच्चे हाफिज़ हों, बट हाफिज़ होना, मुफ्ती होना, आलिम होना और शेख होना हमें नहीं बचाएगा जब तक हम इस किताब के समझने वाले, इस पे गौर व फिक्र वाले नहीं हैं। एक आपका बच्चा 20 साल तक 25-50 किताबें पढ़ के डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, पायलट बनता है, कुछ भी बनता है, लॉयर बनता है, और उसको अल्लाह की किताब खोली जाए उसके सामने, उसको पता ही नहीं है कहती क्या, तो क्या वो अकलमंदी है। और आज आप देखिए कि हम मुसलमानों के अंदर यानी इस चीज़ पे जो सोसाइटी कर रही है हम भी वही करेंगे। सब जा रहे हैं, हमारे बच्चे भी जा रहे हैं, 20 साल आपका बच्चा स्कूल में जाता है, नो वन सेज यू क्रेजी। और आप अपने बच्चे को ज़रा 1-2 साल के लिए स्कूल से उठवा कर फुल टाइम कुरान सीखने के लिए कहीं भेजें, सारे कहेंगे यू आर क्रेज़ी। यानी वो कहते हैं ना कि जो ना खूब था वही खूब हुआ, कि ग़ुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर, कि जो कभी कुछ नहीं था वही अब खूब हुआ। जो कपड़े पहन के आज हमारी बहू बेटियां और हम खुद बाहर जाते हैं, कभी अक्ल से पूछिए जिस्म के ऊपर एक और खाल चढ़ा देना, क्या ये इंटेलिजेंस है? आप देख सकते हैं एक एक एंगल। और मैं जितना इस पे गौर फिक्र करती हूँ मुझे लगता है अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें ऐसे दीन से जोड़ा है कि जिसके अंदर हर हुक्म हर बात अक्ल के ऊपर परख लें, फितरत पे परख लें, जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है उस पे देख लीजिए, आपको सब तरफ से ये जवाब मिलेगा कि दीन पे प्रैक्टिकली अमल करने वाला ही अकलमंद है। मैंने आपसे यहाँ 1 घंटा तकरीबन बात की, 1 घंटा 11 मिनट हुए हैं अभी तक, ये बाकायदा बात शुरू हुए भाई। मैं कितनी भी खूबसूरत बातें करके यहाँ से उठ के चली जाऊँ, हो सकता है आप में से आधे लोग बड़ी अच्छी बातें कर गई हैं, मैं अकलमंद नहीं हूँ। अच्छी बातें करने वाले अकलमंद नहीं होते, कम अच्छी बातें भी करते हैं ना। बात अच्छी करे तरीका नहीं भी आता, इट्स फाइन, बट जब अमल करूँ तो मेरे घर में अमल अच्छा हो, मेरे अमल की सच्चाई लोगों को बताएगी कि शी इज़ इंटेलिजेंट। वरना ये कुरान क्या मुर्दों पे बख्शने के लिए, ये इसाले सवाब हसूले सवाब बरकत जिन्नों भूतों के लिए आती, तो इसमें विरासत की बातों की आयतों का क्या हुक्म था? मैं अक्सर कुरान की आयतों से बातें करती हूँ, मैं कहती हूँ आयत अगर तेरे पे अमल नहीं करना, तुझे समझ के किसी ने मतलब नहीं समझना तो क्यों आई? देखिए ना, अगर स्वाब होता तो पूरा कुरान बिस्मिल्लाह का होता, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, बहुत अच्छा। कुरान ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल्लिल मुत्तकीन। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें अपनी इस मुख्तसर सी ज़िंदगी से भरपूर फ़ायदा उठाने वाला बनाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث या अल्लाह हमारी इस छोटी सी कोशिश को कबूल फरमा, और या अल्लाह हमें सही मानों में अपनी जहानत का सही इस्तेमाल करने वाला बना। या अल्लाह हमें ईवल जीनियस ना बना, या अल्लाह हमें ऐसा स्मार्ट ना बना कि हम सिर्फ दुनिया के थोड़े से फ़ायदे की खातिर तुझे नाराज़ कर दें। या अल्लाह हमें अपने आप को हलाक करने वाला स्मार्ट ना बना, या अल्लाह हमें लोगों के से नहीं तुझसे डरने वाला बना, हमारी उम्मीदें लोगों से नहीं तुझसे लग जाएँ। और या अल्लाह तो हर फितने से बचा, हर आजमाइश से बचा। या अल्लाह हमें उन थोड़ों में कर लें कि जिनके बारे में तो कुरान में कहता है कलीलों में निबाद ये शुकूर। या अल्लाह हमें मेजॉरिटीज़ अथॉरिटी के कुलिये से हटाकर सिर्फ़ एक अल्लाह के नाम पर चंद लोगों का जमा होना ये ज़्यादा कामयाबी दिलाता है, बजाय इसके कि हम गो विद द फ्लो मुआशरे के रंग में रंगे। अल्लाह तो हमारी मदद फरमा। जिन साथियों ने भी आज के इस प्रोग्राम में कोशिश की, मदद की, जो यहाँ क्लासेस लेते हैं, जो देते हैं, या अल्लाह उन सब की ज़िंदगियों में बरकत दे, सेहत आफ़ियत अता फरमा, इस कुरान के नूर को दिलों में और उनकी ज़िंदगियों में दाखिल कर दे। और या अल्लाह जो अब आने वाले रमज़ान के प्रोग्राम वर्ल्ड वाइड शुरू हो रहे हैं तो सब में अपनी मदद फरमा। हम सब को तौफीक दे कि हम तेरे कलाम को उसी तरह से समझें, उसी तरह से ले जैसे कि तूने उसको पेश किया। हमें अपनी ख्वाहिशों को इस किताब के सीखने सिखाने में दखल देने वाला ना बना। और या अल्लाह सबसे ज़्यादा मुझे कहने से ज़्यादा अमल वाला बना। मेरे किसी अमल को देखकर लोग इस कुरान से दूर ना हों बल्कि मेरी वजह से इस किताब से करीब हो जाएं। हमारे माँ बाप पे रहम फरमा, उनको सेहत और आफ़ियत अता फरमा। या अल्लाह बच्चों को शोहरों को आँखों की ठंडक बना, जो परेशान है उनको उनकी परेशानियों से निकाल। और या अल्लाह हमें सच्ची और सीधी बात कहने वाला बना दे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين امين ثم امين جزاك الله خير واحسن الجزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.